प्रेमानंदे जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तारीख कितनी है?
छह
फरवरी सोमवार का दिन हम लोग वृंदावन बरसाना धाम में बैठे हुए। हरे कृष्ण। आप लोग में से चैतन्य महाप्रभु कितने लोग जानते हैं? हरे कृष्ण। बाकी लोग नहीं जानते, कोई बात नहीं, बता देंगे। नहीं मालूम होने में कोई अपराध नहीं है, लेकिन नहीं माने होने पर बोलना चाहिए कि नहीं मालूम, तो फिर आगे मालूम हो सकता है। ज्ञान प्राप्त करने की सबसे पहली सीढ़ी है कि ये बताना कि मुझे पता नहीं है, बताओ, तो फिर ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो श्री कृष्ण, मैंने आपको कहानी बताई ना कल, इमली तला के नीचे बैठ गए थे और राधा रानी का ध्यान किया था, फिर क्या हुआ था? हाँ, एक व्यक्ति बोलो जोर से। जब भगवान कृष्ण, हाँ स्वर्ण रंग के हो गए ना वो, जब राधा रानी का भाव लेकर उन्होंने ध्यान किया, राधा रानी का ध्यान किया तो राधा रानी का रंग उन्होंने धारण किया, और उस अवस्था में उन्होंने जो राधा भगवान से प्रेम करती है उस प्रेम का उन्होंने अनुभव किया। बहुत रहस्य वाली बात है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। जो राधा रानी भगवान पर प्रेम करती है और उस प्रेम करने से जो अनुभव करती है आनंद का, वो अनुभव कृष्ण भगवान ने राधा भाव से जब राधा रानी का ध्यान किया तो उसका अनुभव किया, और तभी निश्चय कर लिया कि अगले अवतार में हम इसी भाव में आएंगे, भक्त बनकर आएंगे, क्योंकि भक्त जो होता है वो भगवान से भी अधिक आनंद को अनुभव करता है। क्यों? क्योंकि भक्त भगवान की सेवा करता है। जब भक्त भगवान की सेवा करता है तो भगवान को उनकी सेवा होते हुए जितना आनंद होता है उतने भी अधिक आनंद भक्त को भक्त भगवान की सेवा करते हुए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप सेवा करते हो उससे भी अधिक आनंद सेवा करने वाले को मिलता है, सबसे अधिक कृपा सेवा करने वाले को। तो वो दिव्य आनंद अनुभव करने के लिए अगर लोग आगे बैठिए, तो लोग पीछे कुछ जगह नहीं है, आगे बैठिए। तो वो दिव्य आनंद अनुभव करने के लिए भगवान अपने भगवान का स्थान छोड़कर भक्त का अवतार लेके आते। अब तक भगवान ने अनंत अवतार लिए हैं, इतने सब विष्णु के अवतार हैं, विष्णु स्वरूप अवतार है, मत्स्य भी परम भगवान थे, वराह भी परम भगवान थे, नरसिंह परम भगवान थे, वामन भी परम भगवान थे, लेकिन ऐसा एक ही अनोखा अवतार है जो भगवान के रूप में नहीं आया। भगवान तो है लेकिन वो भक्त जो भक्त बनकर आए, और भक्त बनकर जो भक्त को अनुभव अवेलेबल है उसको भगने के लिए आए, उसको समझने के लिए आए। वो अवतार का नाम क्या है? जोर से बोलो,
श्री
चैतन्य महाप्रभु, श्री गौरांग महाप्रभु। आज से 526 साल पहले चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ, 14 और 12, 526 साल पहले। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण के स्वयं श्री कृष्ण है, अवतार नहीं, श्री कृष्ण स्वयं है। और नवद्वीप धाम बंगाल में है, वहां पर उनका जन्म हुआ। नवद्वीप यानी कि नौ द्वीप, नाइन आइलैंड्स, बेट ऑफ बेट। उसका जो अंतरद्वीप है उसका नाम मायापुर है, उसमें चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। और जन्म भी हमारे जैसे नहीं हुआ, नीम के पेड़ के सामने प्रकट हो गए माता के गर्भ से। जैसे आमतौर पर लोगों का जन्म होता वैसा नहीं हुआ, इसलिए उनका नाम पड़ा निमाई, जो नीम के पेड़ के पास में अवतरित हुए, प्रकट हो गए। तो वो चैतन्य महाप्रभु क्यों प्रकट हो गए? क्योंकि वो भगवान के प्रेम का जो भक्त लोग अनुभव करते हैं, वो उनको उनका अनुभव करना, इसलिए वो प्रकट हुए। ये उनका अंतरंग कारण है, हृदय का अंदर का जो योजना है वो ये थी। और दूसरा कारण ये था कि पूरे विश्व को उसी आनंद से उनको परिचित कराना था। कलयुग के लोगों को बहुत दुख भोगना पड़ता है, बहुत परेशानी होती है, सब प्रकार के क्लेश अधिक अधिक मात्रा में दुर्गुणों के होने से भोगने पड़ते हैं, सब सद्गुण नष्ट हो जाते हैं और दुर्गुण ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अवस्था में भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो बहुत भगवान आसान कर देते हैं। लगा दो भगवान के दिव्य आनंद को वो सब लोगों को बांटना चाहते हैं। शरीर के दुर्गुण के कारण लोग बहुत पीड़ा सहन करते हैं, सद्गुण समाप्त हो जाते हैं, स्मृति समाप्त हो जाती है, लोगों को याद नहीं रहता है, झगड़ा करते रहते हैं, परेशान रहते हैं हमेशा, कोई अच्छी चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं, बुरी चीज जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कलयुग की भयंकर अवस्था होती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान को प्राप्त करने का जो रास्ता है वो भी आसान कर देते हैं। वो कहते हैं कोई ध्यान करने की जरूरत नहीं, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं, कोई त्याग करने की जरूरत नहीं, कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं, केवल भगवान का नाम लो और भगवान की प्राप्ति करो। तो ये जो भगवान को प्राप्त करने का कलयुग का जो मार्ग है, जिसको युग धर्म कहते हैं, वो जो युग धर्म है उसको स्थापन करने के लिए और सब लोगों को भगवान का नाम वितरित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। तो वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होते हुए भी भक्त बनकर स्वयं कृष्ण की भजन करते थे। तो ये भी उन्होंने दिखाया कि कृष्ण का भजन भक्ति कैसे करते हैं। अगर किसी को कुछ सिखाना है तो भगवान से अधिक कौन अच्छा सिखा सकता है। तो भगवान का भजन भक्ति कैसे करनी है, ये भगवान ही अपने स्वयं उदाहरण से सिखा रहे हैं। तो वो भगवान अपने जीवन के 24 साल मायापुर में रहे, जहां उनका जन्म हुआ, उनका विवाह भी हुआ। उनकी पहली पत्नी जिसका नाम था लक्ष्मी प्रिया, तो उनको सर्पदंश हो गया और वो गुजर गई। फिर दूसरा विवाह हुआ भगवान का, उनका नाम था विष्णु प्रिया। और विष्णु प्रिया इतनी श्रेष्ठ पत्नी थी, सर्वगुण संपन्न थी, सौंदर्यवती थी, शालीन थी, कुलीन थी और भगवान की सेवा में मग्न थी वो। तो ऐसी देवता समान, देवी समान पत्नी होने पर भी और सर्वाधिक प्रिय माता, सच्ची माता होने पर भी उम्र के 24 साल में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया। उन्हें इसलिए लिया क्योंकि जिस उद्देश्य से वो आए थे भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, कुछ कुछ लोगों का मजाक उड़ाने लगे, कुछ लोग उनके अवज्ञा करने लगे। बड़ी लंबी कहानी आपको थोड़ी सी बता रहा हूं। तो उन्होंने सोचा कि सन्यासी अगर मैं बनता हूं तो सन्यासी को सब लोग गद्दोर प्रणाम करते हैं, तो जो भी सन्यासी कहता है उसको पालन करते हैं, उनकी आज्ञा को टुकराते नहीं है। उनका सम्मान करते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाते हैं। तो अपना सुंदर आनंदमय गृहस्थ जीवन छोड़कर उन्होंने विश्व के कल्याण के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, परिवार को छोड़ दिया और वहां से वो जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी में उन्होंने कुल 18 साल निवास किया, लेकिन उसके पहले उन्होंने दक्षिण भारत में यात्रा किया। अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने के लिए उसके बहाने वो चले गए, लेकिन उनका मूल उद्देश्य था भगवान का नाम सबको वितरित करना। और वहां से वो हमेशा वृंदावन जाने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनको वृंदावन जाकर भगवान के धाम का दर्शन करना। स्वयं भगवान है, स्वयं उनके भक्त बनकर आए हैं और अपने ही स्वरूप का भक्ति करने के लिए और अपने ही स्वरूप का जो मूल स्थान है वृंदावन, वहां जाने की तड़प रहे हैं। थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। तो वो हमेशा कोशिश करते रहे कि हमको वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है। जो उनके साथी थे, संगी थे, उनके पार्षद, उनको छोड़ नहीं रहे। वो बोल रहे कि अभी ढोल यात्रा होगी, अभी जन्माष्टमी आ रही है, अभी रथ यात्रा होगी, अभी ओढ़ षष्ठी आ रही है, ऐसे अलग अलग उत्सव जगन्नाथपुरी में होते हैं। उनका बहाना करके उनको वो पोस्टपोन करते थे। एक पूरा साल हो गया, पहले बताया था कि अभी जन्माष्टमी आ रही है, फिर अभी जन्माष्टमी भी आ गई, फिर भी उनका रोकना बंद नहीं हुआ। मत जाओ, उनको विरह को सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे। लेकिन फिर भी एक बार फिर वो चले गए। तो भक्तों ने विनती किया कि किसी को साथ में लेके जाओ। तो पहले जब निकले थे तो उनके साथ हजारों भक्त निकले कि हम भी चलेंगे आपके साथ। तो सनातन गोस्वामी ने उनको कहा, ये भगवान आप तो परम ज्ञानी हो, सब जानते हो, लेकिन हमारे आपको एक सूचना है कि श्रीवृंदावन वृंदावन में जाने के समय हजारों लोगों को लेकर आप मत जाइए, आपके भजन में बाधा आएगी। इसलिए वो वापस लौट के आए और अगली बार जब निकले तो अकेले निकल गए, निकलने लगे। तब नित्यानंद प्रभु और भक्तों ने कहा कि भगवान आप अकेले मत जाओ, किसी को सहायता में ले लो। तो अगर आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र करके नाचते हो दोनों हाथ ऊपर करके, तो आपके वस्त्र कौन संभालेगा, आपकी माला कौन संभालेगा, आपको वस्त्र धोके कौन देगा, आपके लिए भोजन कौन बनाएगा। तो कम से कम एक सर्वट लेके जाओ, सेवक लेके जाना। तो फिर वो राजी हो जाते। एक ब्राह्मण को बलभद्र भट्टाचार्य, उसका नाम याद रखना बलभद्र भट्टाचार्य, उनको लेके वो चलने लगते और जगन्नाथपुरी से झारखंड के रास्ते से आने लगते। और उस झारखंड के रास्ते में बड़ी लंबी लीला है, छोटे से बताते हैं आपको। झारखंड लीला, झारखंड में जंगल था उस समय। झारखंड के जंगल में बहुत खूंखार जानवर थे, हाथी थे, घोड़े थे, सिंह थे, शेर थे, भेड़िया थे, हर प्रकार के भयंकर क्रूर जानवर थे। तो वो सब जानवर जो है जिनकी हरिनाम कीर्तन को सुनते हुए पागल हो गए, सब नाचने लगे, आनंद में बेहोश हो गए। इन प्राणियों की आंखों से अश्रु आने लगे। वो शेर हिरण को गले लगा रहा है, सिंह गाय को गले लगा रहा है, हाथी सिंह के साथ नृत्य कर रहा है, ऐसे भयंकर दृश्य हुआ। आज भी आप जाएंगे झारखंड में तो इन प्राणियों के पैरों के निशान वहां पर हैं, क्योंकि जब प्राणी वहां पर नृत्य कर रहे थे तो भूमि भी आनंद से विभोर हो गई और पिघलने लगी, तो उनके पैरों के निशान जो है अति आनंद में नृत्य करते हुए। ये कल्पना करना बड़ा मुश्किल है हम लोगों को, तो हम लोग इंसानों को नाचते हुए देखते हैं। भगवान जब स्वयं कीर्तन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन, जो मंत्र आप हम लोग चांदनी करते हैं, आज यहाँ पर भजन करते हैं, वही मंत्र भगवान ने जप किया और उसके प्रभाव से, उसके प्रेम से, उसके स्पर्श से, उसके अनुभव से ये सब प्राणी जो थे, जो वैसे खूंखार होते हैं, हाँ शेर गाय को खाता है, शेर हिरण को खाता है, सिंह हिरण को खाता है, ऐसी और जंगल में अवस्था होती है, ऐसे एक दूसरे के शत्रु होने वाले प्राणी भी भगवान के नाम के कीर्तन सुनने से, भगवान के मुख से ही आनंद विभोर हो गए, आंखों से अश्रु बहाने लगे और प्राणी होते हुए भी इनके मुंह से पूरा हरे कृष्ण महामंत्र वो बोल सके। ये भगवान के अस्तित्व का, भगवान के द्वारा किए गए कीर्तन का परिणाम। तो सब प्राणियों को उन्होंने गले लगवाया, प्रेम से आंसू बहाए सबसे, और फिर वैसे करके फिर बाद में वो वृंदावन पहुंचे। श्री वृंदावन पहुंचे, आज की हमारी कथा का पहला मूल विषय वो है। कोशिश करेंगे कि आज की कथा में जितना भी हो सके उतना
घड़ी है क्या
घड़ी रखो काम है। तो जब वो श्री वृंदावन में आए, सबसे पहले मथुरा में आए और मथुरा पे आकर जैसे ही मथुरा नाम सुना हो कि मथुरा आ गया है, तो मथुरा के नाम सुनते हुए बेहोश होकर गिर गए। क्यों? क्योंकि मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ था। तो कृष्ण का जन्म हुआ था, वो जन्मभूमि में हम लोग आ गए, ये सोचकर ही वो आनंद से बेहोश हो गए। फिर बल्लभद्र भट्टाचार्य ने पानी डालकर उनको उनके कान में हरे कृष्ण मंत्र बोला, फिर वो होश में आ गए। ये उनका बेहोश होना और पानी डालना और कान में कीर्तन करना, ये इसके बाद में अनंत बाद हुआ वृंदावन में। जहां जहां गए वो ऐसे ही उनकी स्थिति हो गई आनंद से। तो फिर मथुरा आते ही पहले जमुना जी दिखाई पड़ती है। तो जमुना जी में उन्होंने छलांग लगाई, स्नान किया, बार बार छलांग लगाई, बार बार डुबकी लगाई, भगवान की याद करते हो कि इसी ये जमुना में वसुदेव जी भगवान को लेकर टोकरी में डालकर निकले थे, इसी जमुना को भगवान ने चरण स्पर्श दिया था। और ऐसे भी कथा आती है कि भगवान एक समय पे टोकरी से गिर गए थे जमुना जी में, वसुदेव लेके जा रहे थे, इतनी लहरें आ रही थी कि भगवान जमुना जी में गिर गए थे। फिर भगवान को उन्होंने वापस उठा के, क्योंकि भगवान ऐसे जमुना जी का जो भाव था भगवान के प्रति, जमुना जी ऊपर ऊपर क्यों आ रही थी, भगवान के चरण को सुना जाते। तो भगवान ने जमुना जी को पूरा आनंद दिया, पहले चरणों को स्पर्श कराया, फिर खुद कूद गए उसके अंदर। जमुना जी क्यों, जमुना जी कैसे हैं, जमुना जी भगवान का चरणामृत है, भगवान के शरीर को छुआ हुआ, स्पर्श किया हुआ, स्नान किया हुआ जल जमुना जी। तो ये सोचकर बार बार जमुना जी में कूदे हो आनंद से विवर होकर। तो स्नान करने के पश्चात एक ब्राह्मण से उनको मुलाकात हुई, उनका नाम था सनोडिया ब्राह्मण। ये जाति ऐसी थी कि ब्राह्मणों के अंदर ये श्रेष्ठ जाति नहीं है, कुछ ब्राह्मण जो होते हैं वो ब्राह्मणों के लिए भी संस्कार करते हैं, नामकरण है, विवाह संस्कार है और गृह प्रवेश है, ऐसे सारे संस्कार करते हैं। लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे होते हैं वो वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, उनके लिए संस्कार करते हैं। तो उनमें से ब्राह्मण थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्नान करने के पश्चात जैसे ही नृत्य शुरू किया हरे कृष्ण महामंत्र का, तो उसको सुनकर सनोडिया ब्राह्मण भी बहुत पागल हो गए आनंद से, और ऐसे नृत्य करने लगे, ऐसे नृत्य करने लगे कि महाप्रभु भी कीर्तन करते हुए उनको देखने लगे। अरे इतना अद्भुत नृत्य कर रहे हैं, उनको आश्चर्य हुआ ये कोई विशेष ब्राह्मण है। तो कीर्तन समाप्त होने के बाद उन्होंने उनको पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं सनोडिया ब्राह्मण, आपका परिचय दो। तो वो कहते कि माधवेंद्रपुरी का मैं शिष्य हूं। तो माधवेंद्रपुरी का शिष्य सुनते ही तुरंत तो उनके चरणों में गिर गए चैतन्य महाप्रभु। तो उनको बड़ा संकोच हो गया, अरे आप तो महाप्रभु चैतन्य हो, आप हमारे चरणों में गिरकर हमको संकोच कर रहे। तो महाप्रभु चैतन्य केवल बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी ऐसे बोल के चरणों को दंडवत कर रहे। तो ब्राह्मण को समझा नहीं कुछ। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने ब्राह्मण को समझाया कि चैतन्य महाप्रभु के जो गुरु हैं, जो उन्होंने गुरु किए ईश्वरपुरी, ये स्वयं माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे। तो आपको अपने गुरु के गुरु भाई के रूप में देख रहे, मतलब गुरु के समान ही देख रहे, दंडवत प्रणाम कर रहे। इसलिए सनोडिया ब्राह्मण को संकोच हो रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को ब्राह्मण बताते हैं कि हमारे घर में माधवेंद्रपुरी ने भोजन किया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हम आपके घर में भोजन करेंगे। ब्राह्मण कहते नहीं नहीं आप तो हम तो निचले कुल के ब्राह्मण हैं, आप सन्यासी होकर हमारे घर पे आएंगे, ब्राह्मण के हमारे घर पे, तो लोग आपकी निंदा करेंगे कि आप ऐसे कैसे निचले जाति के ब्राह्मण के घर में भोजन करते हो। तो महाप्रभु जी उनको श्लोक सुनाते हैं गीता का, यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् एवं करो जना। स्वयं माधवेंद्रपुरी जो कृष्ण प्रेम से व्याकुल होते थे, साक्षात गोलोक वृंदावन के कल्प वृक्ष के अवतार थे, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति अगर आपके घर में प्रसाद लेते हैं तो महाजन है, तो महाजनों के चरणों का अनुकरण करना मेरा कर्तव्य है। अगर माधवेंद्रपुरी जी को आपके घर में भोजन लेने में कोई संकोच नहीं था, तो मुझे जो उनके शिष्य का शिष्य है संकोच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर सनोडिया ब्राह्मण कहते हैं कि ऐसा करिए, आप बलभद्र भट्टाचार्य जो आपके साथ में ब्राह्मण आए हैं उनको हमारे घर में भोजन करने को बताइए, फिर अच्छा रहेगा, उसका संकोच कम रहेगा। बोले कुछ नहीं, आपको ही आपके घर में बनाना है और आपके हाथ से हम खाएंगे। इस उन्होंने ब्राह्मण से बहुत चर्चा करके आखिर में उन्होंने उनके घर में भोजन किया और बड़ा आनंद पाया। इस अनोडिया ब्राह्मण जो है उन्होंने कहा कि हम आपके संग ही चलेंगे, अभी जहां भी आप जाएंगे वृंदावन आपके संग चलेंगे, और मथुरा छोड़ के चले गए उनके पीछे। तो कितने लोग हुए उनके साथ में, एक बल्लभद्र भट्टाचार्य और एक अनोडिया ब्राह्मण। तो जब वो आगे चलने लगे वृंदावन की ओर, उनको जाना था वृंदावन, तो वृंदावन को आगे जाना था, तो रस्ते में वो नृत्य करते करते अभी मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा, मैं वृंदावन पहुंच जाऊंगा, ऐसी भावना से वो आगे बढ़े आगे बढ़े। तो रस्ते में बहुत सारी गायें आई, और ग्वाला भी था उनके साथ में, गोपाल गाय चरा रहा था। तो गाय जो है वो ग्वाल बाल को छोड़ के भगवान के पीछे भागने लगी। जैसे भगवान की बांसुरी सुनकर सब गाय भागा करती थी, भगवान की बांसुरी में एक ऐसा स्वर है जब वो बजाते हैं वो स्वर सुनते ही छठवा स्वर है, छठवा स्वर बजाते ही सारी गायें अपनी पूंछ उठाकर कान उठाकर भागती है भगवान की ओर, और भगवान को देखकर स्तंभित हो जाती है। जैसे कोई चित्रपट हो, बिना हिले अपनी सारी आत्मा कानों में एकत्र करके भगवान की मुरली की धुन सुनते हैं, और लगता है कि चित्रपट है कि आकृति है कि मूर्ति है, ऐसा लगेगा आपको, जरा सा भी नहीं हिलते, इतना भाव विभोर होकर उनकी मुरली सुनते हैं। तो वैसे ही उनको जब महाप्रभु चैतन्य के मुख से, स्वयं कृष्ण है, उनके मुख से उन्होंने कीर्तन सुना, तो सब गाय ऐसे ही पागल होकर उनके पीछे भागने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने हर एक गाय को आलिंगन दिया, हर एक गाय को दुलारा, हर एक गाय को चुंबन दिया, बड़े प्रेम से हाथ घुमाया उनके शरीर पर, वो खान उखर करके भगवान के अपने नेत्रों से दर्शन कर रहे थे। बहुत मुश्किल से वो ग्वाल बाल ने उनको खींच खींच के फिर वो अपने रास्ते में ले गए, क्योंकि वो जहां भगवान जा रहे थे उनके पीछे ही भाग रहे थे, और ग्वाले का घर दूसरी जगह पे था। बहुत कोशिश के करने से गाय को उन्होंने अपने भगवान से छुड़ाया और आगे जाने लगे। फिर उनके रास्ते में मोर आए, और मोर उनका पंख फुलाकर नृत्य करने लगे। जैसे हरे कृष्ण मंत्र गाने लगे उसके ही धुन पर नृत्य करने लगे मोर, और गला झुका झुका कर क्याँ, क्याँ, क्याँ। ऐसे आवाज कर दिया, बहुत आनंद विभोर होकर, और वो मोर को देखकर भगवान मूर्छित हो गए। लोग उनको भगवान की याद आई, कृष्ण भगवान की, तो मोर पंख धारण करते हैं, नीला रंग के मोर होते हैं, और देखिए भगवान कीर्तन कर रहे हैं, वो खुद बेहोश हो गए। फिर उनको होश में लाया गया, फिर वापस वो कीर्तन करने लगे, फिर मोर नृत्य करने लगे। फिर सब पंछी आए, कोयल आई, और भवरा आया, भवरे बहुत सारे भवरे आए, और भवरे ने भवरों ने मिलकर पंचम स्वर में कीर्तन किया। ये पंचम स्वर जो है बहुत महत्वपूर्ण है, ये पंचम स्वर में भगवान मुरली बजाते हैं तो सब गोपियां पागल होकर रास में प्रवेश करती हैं, सबका ध्यान जो है एकदम विचलित होकर अपना घर का काम कर्तव्य भूल कर सब गोपियां जो है भाग जाती है जंगल में ही, जहां भगवान पंचम स्वर में मुरली बजाते। उसी पंचम स्वर में भवरों ने कीर्तन किया, तोतों ने किया, कोयल ने किया, सब पंछियों ने अपनी अपनी आवाज में भगवान को स्वागत किया, और भगवान ने भी हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके उनको प्रतिसाद दिया। जो घास थे जिस पर आप बैठे हुए हैं वो सब मुलायम बन गए भगवान के चरणों को आनंद देने के लिए, और अपना चरण स्पर्श करके भगवान ने हर घास के पत्ते से अपना रिश्ता बनाया। ऐसे भगवान करते, देखो आप, एक भगवान है, अनंत चरण के पत्ते हैं, अनंत पक्षी है, अनंत भौरे हैं, अनंत मोर है, सबको वन टू वन प्रतिसाद दे रहे हो। वैसे ही जैसे वो हर एक जीव के हृदय में परमात्मा मन के साथ दे रहे हैं। और ऐसे लिखा है कि जो हिरण जैसे जानवर होते हैं ना, आमतौर पे इंसान के पास में नहीं आते हो, दूर से भाग जाते हैं, खरगोश है भाग जाता है, कुत्ता बिल्ली पास में आ जाते हैं, लेकिन जो हिरण होता है या तो खरगोश होता है तो दूर भागता है। लेकिन इस समय चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन सुनकर भाव विभोर होकर हिरण उनके पीछे पीछे भागने लगे। ऐसे बताया गया कि हिरण कौन है, ये सब महात्मा जन है। कि हिरणों की एक विशेषता है, ये हिरण जो है इनका भागवत में वर्णन आता है कि अपने नेत्रों से ये भगवान की पूजा करते, बस कोई घंटी नहीं है, कोई आरती नहीं है, कोई दीपक नहीं है, कोई चावर नहीं है, हाँ कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए पूजा करते हैं ना हम लोग यहाँ पर शंख बजाते हैं। ये सब साहित्यों को लेकर हम लोग भगवान की आरती उतारते हैं, लेकिन ये केवल नेत्रों से भगवान की आरती उतारते हैं। क्यों ऐसे कर सकते हैं वो? क्योंकि गोपियां सब अपने शरीर पर चंदन, अगुरु और अलग अलग प्रकार के सुगंधित द्रव्य लगाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, अगुरु लगाते हैं, भगवान को आनंद देने के लिए अपने शरीर को सुशोभित करते हैं। और फिर भगवान के चरण कमल जो है अपने छाती पर लगाते हैं। जब वो छाती पर लगाते हैं तो छाती पर लगा हुआ जो चंदन, कुमकुम, अगुरु जो मिश्रण है भगवान के पैर को लगता है। फिर भगवान उस पैर को लेके चलते हैं, फिर वो जो चंदन अगुरु का कुमकुम का मिश्रण है वो घास को लगता है, लगता है ना, चलते जाएंगे तो सब चिन्हों से आएंगे। फिर वो घास ये हिरण खाते हैं, जैसे ही खाते हैं इस घास को तो भाव विभोर हो जाते हैं आनंद से। और ऐसे बड़ी बड़ी आंखें तो वैसे सुंदर ही होती हिरण की, लेकिन बड़ी बड़ी करके भगवान को नेत्रों से उनका दर्शन पान करना आरंभ करते थे और नेत्रों से भगवान को पूछते हैं तो भगवान को ले जाते हैं। ऐसे हिरण चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे भागने लगे बिना संकोच, जो हमेशा शर्मा रहे हैं भगवान इंसान के पास में आने के लिए, उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद में उनका वृक्षों से संपर्क हुआ, जितने सारे वृक्ष थे भगवान चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे तो सब रोमांचित हो गए। हमारा रोमांच जैसे होता है, हमारे बाल खड़े हो जाते आनंद से, वो वृक्षों के पत्ते जो है वो खड़े हो गए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान कीर्तन करते जा रहे हैं और पेड़ों के पत्ते जो है ऊपर ऊपर जा रहे हैं। जिन पर फल नहीं थे, फूल नहीं थे, ऐसे वृक्षों पर फल और फूल उत्पन्न हो गए अचानक। और वो जो पेड़ है, कुछ पेड़ों ने तो झुककर, पूरा झुककर भगवान को दंडवत प्रणाम किया, ऐसे वर्णन दिया है। और हर एक पेड़ को भगवान ने गले लगाया और अपना प्रेम दिया, क्योंकि वो सब महाजन है, वो सब ऋषि मुनि हैं, जो शांत रस में भगवान का भजन करने के लिए वृंदावन धाम में, मथुरा धाम में, वृंदावन भूमि में वृक्ष बनकर यहाँ भजन करते हैं। राधा कुंड किनारे भी पंच पांडव जो है वो वृक्ष बनकर भजन कर रहे हैं, अभी भी करते हैं। तो ये ऋषि जो है आप जहां पर दिखाई पड़ते हैं, सब साधारण जीव नहीं है, ऋषि मुनि है। एक तो ऋषि मुनि है नंबर वन, एक स्वयं राधा और कृष्ण है। और वृक्षों के अंदर एक शक्ति होती है, जब भी कोई आध्यात्मिक सत्संग होता है या जब कोई भगवान की लीला होती है तो उसका जो सार है वो ये वृक्ष ग्रहण करते हैं। और जब कोई हमारे से जीव इनके संपर्क में आते हैं तो वो जो सार है धाम का, भगवान की लीलाओं को देखने के बाद जो आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है, आनंद प्राप्त होता है, उसका जो सार है वो हम लोगों को देते हैं। इसलिए धाम के अंदर जब हम वृक्षों के पास जाते हैं तो बड़ा दिव्य अनुभव होता है। इसलिए भक्त लोग धाम में जाकर वृक्षों को गले लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या है कि जो हमारी हर इच्छा को पूर्ण कर सकता है, ऐसे अनंत कल्प वृक्ष भगवान के धाम है, क्योंकि ये भी भगवान का धाम है, उसी का हिस्सा है। यहां पर भी जितने पेड़ है वो सब कल्प वृक्ष है, उसके सामने खड़े होकर हमको जो भी आध्यात्मिक इच्छा प्रकट करते हैं वो सब पूरी कर देते हैं। यहाँ पर के पेड़ भी उसी प्रकार के हैं, जो भी पेड़ आपको दिखाई पड़ते हैं, लता पता वेली, सब राधा रानी का स्वरूप है, सब कल्प वृक्ष है और साधु भी है, अलग अलग प्रकार के वृक्षों का अलग अलग स्वरूप है। तो क्योंकि वो यहाँ पर भगवान का इंतजार कर रहे हैं, धाम में निवास कर रहे हैं, जैसे भगवान का दर्शन हुआ भक्त के रूप में तो वो उन्होंने कुछ नहीं, लोगों ने पेड़ों ने उनको दंडवत प्रणाम। हर एक पंछी का आवाज निकालकर भगवान ने पंछियों को अपना प्रतिसाद दिया, सभी हिरणों को गले लगाया। फिर भगवान जब आगे चलने लगे तो ऐसा वर्णन आता है कि पृथ्वी भी आनंद में कंपित हो रही थी। इसके बाद में चैतन्य महाप्रभु आगे चल रहे थे तो एक पेड़ पर एक तोता और एक मैना, उसको कहते हैं संस्कृत में शुभ और सारी, और बैठे थे। कुछ सोचने के पहले ही वो दोनों उड़कर भगवान की उंगली में आकर बैठ गए। देख सकते हैं आप कितना सुंदर दृश्य है, भगवान की उंगली में दोनों आकर बैठ गए और मनुष्यों की भाषा में बात करने लगे। ये समझना बहुत जरूरी है, श्री वृंदावन धाम में हर एक वस्तु सजीव है, जो आमतौर पर निर्जीव रहती है, जैसे कि हमारा ये तखत है, तो हम बैठे हैं, ये निर्जीव है, ये बोल नहीं सकता है। लेकिन भगवान के धाम में जब भगवान रहते हैं, हमको तो उसका अनुभव होता नहीं, उसको कहते हैं संस्कृत में चिन्मय। चिन्मय यानी कि हर व्यक्ति हर वस्तु सजीव होती है। कोई व्यक्ति देखो पहाड़, फॉर एग्जाम्पल पहाड़ हम लोग क्या बोलते हैं, निर्जीव बोलते हैं, लेकिन यहाँ का पहाड़ कौन है, स्वयं ब्रह्मा जी। नंदगांव में जाएंगे तो पहाड़ निर्जीव है, लेकिन वो पहाड़ कौन है, शिवजी महाराज है। गोवर्धन में जाएंगे तो गोवर्धन पहाड़ है, निर्जीव है, लेकिन गोवर्धन पहाड़ स्वयं विष्णु है। नदी हम बोलते हैं तो निर्जीव है, लेकिन नदी यहां पर जमुना जी है, स्वयं भगवान की सखी है, पंचम पत्नी है भगवान की। वैसे हर जीव जो सजीव हो या निर्जीव लगता हो, उसी वृंदावन धाम में सजीव ही होता है। वो अलग अलग भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग रूप धारण करते हैं। तो शुक और सारी उनकी उंगली पर बैठकर बात चर्चा करने लगे। शुक जो है तोता, वो बोला भगवान कितने आकर्षक, भगवान कितने सुंदर है, भगवान कितने अद्भुत है, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, भगवान शक्तिशाली है, ऐसे भगवान का ऐश्वर्यों का वर्णन करने लगे। सारी ने शांति से सुन लिया। और जब इनका वर्णन समाप्त हो गया तो सारी जो मैना है वो बोली कि ये सब कुछ है आप बोल रहे हो सही है, लेकिन ये सब कुछ सही तब है जब उनके संग में राधा रानी होती है। राधा रानी के अस्तित्व से ही इनके सारे ऐश्वर्य और गुण प्रकट हो जाते हैं। आनंद का, सच्चिदानंद का, बल का, सुंदरता का, कीर्ति का, जितना भी उनका गुण है, लीला पुरुषोत्तम है, वेणु बजाते हैं, क्या क्या करते हैं, सबको आनंद देते हैं, ये सब जो उनके गुण है, जब तो उनके कुशलताएं हैं, ये प्रकट होते हैं जब राधा रानी उनके साथ में रहते हैं। इसका प्रूफ क्या है, राधा रानी चली जाती है तो केवल रोते रहते हैं, तब ना बलवान होते हैं, ना शक्तिशाली होते हैं, ना आकर्षक होते हैं, ना कुछ नहीं होते, केवल रोते रहते हैं। राधा दोबारा आती है फिर उनके ऐश्वर्य प्रकट हो जाते हैं। इस तरह से लंबा संवाद है जो शुक और सारी अपने एक दूसरे में कर रहे हैं। महाप्रभु जी सुन रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सुन रहे हैं, और शुक और सारी शुक भगवान का गौरव कर रहा है और उसको फिर सारी जो है राधा रानी का गौरव करके डिफीट कर रही है। और ऐसा बहुत देर तक चला और अद्भुत भाव से चैतन्य महाप्रभु उसको सुनते रहे और फिर अचानक मोड़कर वापस जाकर पेट बैठे, चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। फिर दोबारा मोर आए, मोर नृत्य करने लगे, दोबारा गिर गए। जब गिर गए वापस बलभद्र भट्टाचार्य आए, जल तिरके देखे, उनको हरिनाम कीर्तन सुनाया कान में, फिर वो आधे होश में आए, आधे होश में फिर वो जमीन पर लोटपोट हो गए, मतलब रोलिंग इन द ग्राउंड, और कुछ कांटों में से गुजरे और जख्मी हो गए। ऐसा कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो चैतन्य महाप्रभु थे तो बहुत आनंद में रहते थे वो, लेकिन जब वो मथुरा के रास्ते पर थे तो उनका आनंद जो है वो 100 गुना बढ़ा। जब वो मथुरा पहुंचे, यमुना जी में कूद गए, तो उनका आनंद 1000 गुना बढ़ गया था। और जब वो वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन में रहे, तो उनका आनंद 1,00,000 बार मुड़ित हो गया था। ऐसे वर्णन आता शास्त्र में, 1,00,000 टाइम्स, 100,000 टाइम्स इज एक्सटेसी इंक्रीज्ड। फिर भगवान वहां से चलते हुए सब पक्षियों को, पेड़ों को आनंद देते हुए अरिष्टग्राम आए। अरिष्टग्राम यानी जहां पर अरिष्टासुर ने आक्रमण किया था, वो बैल के रूप में वहां पर आया था और भगवान ने उसका वध किया था, इसलिए उस गांव का नाम पड़ा अरिष्टग्राम। तो वहां पर वो आते ही एकदम बाह्य चेतना में आ गए, मतलब तब तक तो इतना आनंद विभोर होकर डोलते हुए, कूदते हुए, नाचते हुए, बेहोश होते हुए, वहां पर सबको आनंद देते हुए, पेड़ों को कपाते हुए वहां पहुंचे। वहां पर पहुंचे तो एकदम नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनका वहां पर एक मिशन था, एक इम्पोर्टेंट काम था, वो ये था कि उनको राधा कुंड और श्याम कुंड प्रकट करना था। तो सब ब्रजवासियों को पूछने लगे कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, तो सब बोल रहे हैं कि हमको पता नहीं है। कोई ब्रजवासी उनको बता नहीं पाया कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है। तो कीर्तन करते करते घूमने लगे, फिर एक वहां पर तमाल का वृक्ष था, तमाल तला अभी भी है, तो तमाल तला मतलब तमाल के वृक्ष के नीचे वो बैठे। तमाल तला में बैठकर उन्होंने ध्यान किया, तो उस ध्यान में उनको राधा कुंड और श्याम कुंड की पूरी लीला का दर्शन हुआ और राधा कुंड का भी दर्शन हुआ। और वो जो दर्शन उनको हुआ, वो राधा कुंड श्याम कुंड उनके सामने ही था, इसके नीचे वो बैठे थे, लेकिन वो ऑलमोस्ट नष्ट हो गया था। केवल दलदल के दो छोटे छोटे डबके होते हैं ना मराठी में, वैसे वो वहां पर उपस्थित था। लेकिन फिर भी जैसे उनको दर्शन हुआ वो तमाल तला छोड़कर तुरंत उसके अंदर कूद गए, छोटे छोटे जलाशय के अंदर, छोटे छोटे दलदल से भरे हुए उसमें कूदे, उन्होंने स्नान किया और तान कर जोर जोर से नाचने लगे। वो उनका नृत्य देखकर सब ब्रजवासी भ्रमित हो गए, अचंभित हो गए, अरे ये तो स्वयं कृष्ण ही है। उन्होंने कहा कि इसमें आप स्नान क्यों कर रहे हो, ये तो छोटे से पानी के गहरे छोटे छोटे से कुंड है। तो यही राधा कुंड दर्शा आपको। तब सब ब्रजवासियों ने उनके साथ में कीर्तन में भाग लिया और उन राधा कुंड श्याम कुंड का जो जो रज है नीचे का, मतलब उसको कीचड़ कह सकते हैं लेकिन वो दलदल नहीं, मतलब वो गंदा नहीं होता है, उसका रज को निकाल के उन्होंने तिलक किया और बलभद्र को बताया कुछ तिलक जो है ये जो मट्टी है इसको साथ में ले चलो, क्योंकि राधा कुंड श्याम कुंड स्वयं राधा का स्वरूप है, स्वयं द्रवरूप राधा रानी है। वो जो भी उसमें स्नान करता है उसको कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है और वो कृष्ण को उतना ही प्रिय हो जाता है जितनी राधा रानी उनको प्रिय है। इसलिए उस रज को ले लो। बलभद्र ने कुछ रज इकट्ठा किया आगे लगाने के लिए भविष्य के लिए। फिर राधा कुंड और श्याम कुंड को रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसका जीर्णोद्धार किया, उसको बड़ा बनाया, बहुत अच्छी तरह से खुदाई करके उसको आज आपको राधा कुंड जैसे दिखाई पड़ता है वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने उसको उद्धार किया उसका। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कुसुम सरोवर गए। कुसुम सरोवर वो जगह है जहां पर राधा रानी ने और कृष्ण भगवान ने मिलकर बिने हुए फूलों को धोया था, जमीन पर गिरकर मिट्टी से मैले हुए थे उन फूलों को राधा रानी ने धोया था, वो जगह है कुसुम सरोवर। वहां पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया और वहां पर स्नान करने के पश्चात गिरिराज जी का गोवर्धन का शिला उठा के गले लगाया और भाव विभोर हो गए। वो गिरिराज शिला जो है वो गिरिराज से अभिन्न है और गिरिराज का सब लोग पूजन भी करते हैं। ये शिला जो है किसी ब्रजवासी के हाथ से या गुरु जी के हाथ से आपको प्राप्त होती है तो ही उसका पूजन हम कर सकते हैं। यहां से कोई उठाकर गिरिराज शिला अपने आप घर पर ले जाना मना है, अपराध माना गया है। तो वो शिला को उन्होंने गले लगाकर छाती पर लगाकर नृत्य किया और वो बेहोश हो गए प्रेम के अतिरिक्त से। उसके बाद भगवान मानसी गंगा गए। मानसी गंगा वो स्थान है जहां पर जब नंद बाबा को गंगा जी में स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई थी तो भगवान ने अपने मन से गंगा जी को वहां प्रकट किया था। सबकी आंखों के सामने गंगा देवी ने अपना जल डालकर वहां पर एक बहुत बड़ा कुंड सरोवर तैयार किया। उस लीला को याद करते हुए जैसे भगवान ने अपने मन से गंगा जी को प्रकट किया था चैतन्य महाप्रभु उसमें स्नान करते। स्नान करने के पश्चात वो वहां पर जाते हैं हरिदेव मंदिर में। ये हरिदेव का मंदिर जो है ये गोपियों को स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिया था उसी मूर्ति को प्रकट करके फिर वहां स्थापन किया गया था। भगवान कृष्ण का ही मंदिर है लेकिन ये गिरिराज को उठाए हुए मूर्ति का दर्शन है। तो भगवान ने मानसी गंगा में स्नान करने के पश्चात हरिदेव का दर्शन किया, वहां पर कीर्तन किया। जब उन्होंने वहां पर कीर्तन किया तो सब ब्रजवासी समझ गए कि दोबारा कृष्ण जो है वो कई साल पहले 5000 साल पहले ब्रज को छोड़ के अंतर्धान हो गए थे और तो दोबारा प्रकट हो गए। इन सबको अनुभूति हुई, सब लोगों ने वहां पर कीर्तन किया। उसके बाद में भगवान के मन में गोपाल जी की याद आई। मैं गोपाल जी का छोटी सी कहानी बताता हूं आपको। माधवेंद्रपुरी जिनके शिष्य सनोडिया ब्राह्मण थे, जिनके शिष्य चैतन्य महाप्रभु गुरु थे ईश्वरपुरी, वो माधवेंद्रपुरी वृंदावन जब आए थे तब गोविंद कुंड के किनारे बैठे हुए थे। गोविंद कुंड वो जगह है जहां पर इंद्र ने अपराध करने के बाद में वर्षा रुकाने के बाद में माफी के तौर पर भगवान का अभिषेक किया था और उनका जल जो है वो इकट्ठा होकर गोविंद कुंड बना था। तो वो गोविंद कुंड के किनारे माधवेंद्रपुरी बैठे थे तो भगवान ने स्वयं आकर बालक के रूप में ग्वाल बाल के रूप में आकर उनको दूध पिलाया कि हमारे गांव में कोई भूखा रहता नहीं है और आप केवल भजन ही कर रहे हो, आप कुछ खा नहीं रहे हो, इसलिए मैं आपको स्वयं आके दूध दे रहा हूं। हमारे गांव में ये रिवाज है कि जो लोग भजन करते हैं वो भिक्षा करते हैं उनको सब लोग भिक्षा देकर उनका पालन पालन करते हैं, जो भिक्षा नहीं करते हैं उनको हम आके स्वयं दूध पिलाते। भगवान स्वयं आके उनको दूध पिलाया और फिर भगवान ने उनको स्वप्न दिया था गोपाल जी ने कि मैं यहां पर पत्थरों के बीच में फंसा हूं, उसे निकालकर पहाड़ के ऊपर गोवर्धन के ऊपर स्थापना करो। फिर माधवेंद्रपुरी ने ब्रजवासियों के सहायता से वो उत्खनन करके सुंदर गोपाल जी की मूर्ति प्रकट की थी जो आज श्रीनाथ जी के रूप में प्रसिद्ध है नाथद्वार में। वो गोपाल जी यहां पर प्रकट हुई थी और उसका मंदिर गिरिराज जी के ऊपर है सफेद रंग का। उस गोपाल जी की भगवान को याद आई, पूरी माधवेंद्र की पूरी की जो लीला मैं आपको संक्षेप में बताई वो सब भगवान को स्मरण हुआ उसका, और वो गोपाल जी को मिलने के लिए भागने लगा गिरिराज पर्वत की ओर। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि श्री गिरिराज जी विष्णु का स्वरूप है, इसलिए कोई भी वैष्णव जो है वो गिरिराज पर चढ़ते नहीं, यहां ब्रह्मा जी के ऊपर चढ़ते हैं, शिव जी के ऊपर भी चढ़ते हैं, लेकिन विष्णु के ऊपर नहीं चढ़ते, वैष्णव के लिए मना है। तो चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव के रूप में आए थे, भक्त के रूप में आए थे, तो भी वो चढ़े नहीं, लेकिन उनको गोपाल जी का दर्शन करने का बहुत तीव्र इच्छा था। तो स्वयं कृष्ण गोपाल जी जिनके भक्त के रूप में उन्होंने अवतार लिया, वो गोपाल जी के मन में इच्छा हो कि हमारे भक्त चैतन्य महाप्रभु दर्शन देना चाहिए। तो गोपाल जी ने एक योजना बनाई, सब गांव में ऐसा एक अफवाह फैला दी कि तुर्की मुसलमान सैनिक जो है वो मंदिर को तोड़ने के लिए आ रहे हैं, हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सुनते ही सारे पुजारियों ने क्या किया, तुरंत भगवान गोपाल जी की मूर्ति को मंदिर से उठाया गिरिराज के ऊपर से और सब उसको लेकर वो भाग गए, एक गांव में गए दूर, वहां से 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, इसका नाम है गांठोली। उस गांठोली गांव में लीला हुई थी भगवान के समय पर। हाँ, बहुत सारे लीला आपको याद रखना है, बहुत सारे लीला है इस कथा में। ललिता ने जो भगवान की सखी है राधा रानी की, राधा और कृष्ण एक जगह बैठकर बात कर रहे थे, जैसे जो इस पर तखत पर बैठ के बात कर रहे, तो उनके वस्त्रों को ललिता ने पीछे आकर गांठ मार दी, इसलिए उसका गांव का नाम क्या पड़ा, गांठोली। ऐसे ही गांव इसका नाम है गेंदोवा। क्यों पड़ा गेंदोवा नाम, क्योंकि भगवान ने वहां गेंद खेली। ऐसे ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर गांव है जहां पर आलोकेंद्र के नाम रखे गए। एक गोकुल में घाट है उसका नाम है कोयलो घाट। पता है क्यों यहाँ पड़ा कोयलो घाट, क्योंकि जब वसुदेव जी भगवान को लेकर डूब रहे थे ना जमुना जी में जाते वक्त, तो वो बोल रहे थे कोयलो कोयलो मेरे लाला को कोयलो डूब रहा है कोयलो कोयलो, तो उसका नाम पड़ा कोयलो घाट। सुंदर सुंदर स्थान ब्रज में है। तो गांठोली गांव में ललिता ने राधा कृष्ण के उत्तरीय वस्त्रों को गांठ मार के, जैसे कि विवाह होता है ना ग्रंथी बंधन होता है उसके अंदर गांठ लगाते हैं उसमें, तो ऐसे गांठ लगाई थी। वो गांव में सब ब्रजवासी लोग गोपाल जी की मूर्ति लेकर भाग गए और महाप्रभु चैतन्य को खबर मिली कि अभी गोपाल जी गिरिराज जी को छोड़कर गांठोली गांव में गए हैं जो जमीन के स्तर पर है, पहाड़ पर नहीं है। तो वो भागे वहां से, वहां जाकर उन्होंने 3 दिन लगातार दिन और रात कीर्तन किया गोपाल जी का दर्शन आनंद से करते हुए। यही गोपाल जी है जिनको माधवेंद्रपुरी ने स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर उन्होंने इनको उत्खनन करवाया था और गोपाल जी को पहाड़ पर स्थापन करवाया था। इस आनंद को याद करते हुए उन्होंने 3 दिन वहां नृत्य किया, सब ब्रजवासियों को नचाया और 3 दिन के बाद पता चला कि केवल अपवादी कोई जो की सोल्जर नहीं आए, कुछ हमला नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। ये गोपाल जी की ट्रिक थी कि चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दे, फिर उनको वापस लाने का प्लान किया गया। तो गोपाल जी की जो जुलूस निकला वापस जाने का, उसका नेतृत्व चैतन्य महाप्रभु ने किया और झूमते हुए गाते हुए सबको आनंद विभोर करते हुए चैतन्य महाप्रभु गिरिराज के तलेटी तक तक लेके आए, फिर आगे ब्रजवासी लोगों को लेकर ऊपर गए और गोपाल जी को वहां पर स्थापना किया। ऐसे ही एक बार रूप गोस्वामी जी को गोपाल जी का दर्शन करने का इच्छा हुआ था और रूप गोस्वामी भी पर्वत पर चढ़ते नहीं गिरिराज जी के, तो दोबारा एक बार गोपाल जी ने ट्रिक किया। ये चैतन्य महाप्रभु के बाद की लीला है। महाप्रभु जी ने अपनी लीला समाप्त होने के बाद फिर गोस्वामी जी सब वृंदावन में आए, तो रूप गोस्वामी जी ने इच्छा किया तो गोपाल जी ने वापस ऐसी अफवाह फैलाई कि मुसलमान लोग अटैक कर रहे हैं। तो उस समय ब्रजवासी लोग गोपाल जी को लेकर मथुरा चले गए और 1 महीने तक गोपाल जी को वहां रखा। तब स्वरूप गोस्वामी सभी 6 गोस्वामी को लेकर मथुरा पहुंचे और 1 महीना भर उन्हें गोपाल जी का सेवा किया। फिर गोपाल जी लौटकर फिर ब्रज में आए और गिरिराज के ऊपर विराजमान हो गए। उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु काम्यवन में गए। एक प्रकार का एडवर्टाइजमेंट है आपके लिए, आपको क्या कहते हैं उसको टेम्प्ट करने के लिए, कहां कहां जाए हम कहां जाए, सब जगह पर यहां पर आनंद है। 137 वन है यहां पर, उसमें से 108 वन भगवान को बहुत प्रिय है, उसमें से 12 वन भगवान को अति प्रिय है, उसमें से वृंदावन सबको अति प्रिय है, उससे ज्यादा गोवर्धन प्रिय है, उससे ज्यादा राधा कुंड श्याम कुंड प्रिय है, कहां कहां दर्शन करें। चैतन्य महाप्रभु ऐसे व्याकुल होकर भाग रहे हैं सब जगह पर, तो भगवान फिर चैतन्य महाप्रभु नाचते हुए काम में बंधे। डोंट वरी, कभी लेके जाएंगे आपको। काम्य मन वो वन है यहाँ पर सब काम पूरे हो जाते हैं। सब काम मतलब इच्छाएं जो है सब पूरी हो जाती है, वहां पहुंचने ही आदमी संतुष्ट हो जाता है। ऐसे वो भयं सुंदर वन है वो। जो भगवान को 12 वनों में से श्री वृंदावन धाम सबसे बढ़िया प्रिय है, उसके बाद वाला प्रिय वन जो है वो काम्य वन है, उसको प्रति वृंदावन माना गया है। और काम्य वन में 1000 कुंड है, बहुत लुप्त हो चुके हैं अभी। परशुराम जी ने 9 कुंड बनाए हैं, धर्मराज जी भी वहां पर एक कुंड के पास रहते थे, पांडव कुंड कहते हैं। बहुत सुंदर सुंदर जगह है वहां पर। वहां पर चरण पहाड़ी है जहां पर भगवान ने एक बार चढ़कर बांसुरी बजाई थी, तो बांसुरी बजाने के प्रभाव से पत्थर पिघलने लगा था और उस पत्थर पर पिघलते हुए भगवान खड़े थे, तो उस पिघलते हुए पत्थर पर भगवान के चरणों के निशान बने। एक गाय भाग के आई, लकुटी का निशान भी है, एक पैर सीधा है, एक पैर आधा खड़ा है। ऐसी सुंदर शिला वहां पर है। उस पहाड़ पर चैतन्य महाप्रभु गए और चरणों का स्पर्श करके वो बेहोश हो गए और उन्होंने सभी कुंडों में स्नान किया। और सबसे इम्पोर्टेंट कुंड था विमल कुंड, जो भगवान ने एक बार 3 करोड़ कन्याओं से विवाह किया। तो जहां पर लीला हो रही थी तभी भगवान अदृश्य हो गए एक बार, और काम्य वन में गए और विमल राजा की 3 करोड़ कन्याओं से उन्होंने विवाह किया और उनके साथ रासलीला किया। और रासलीला करने के बाद में रासलीला करने से जो स्वेद उत्पन्न हुआ, स्वेद का मतलब है हमारी भाषा में पसीना, क्योंकि पसीना बहुत गंदा होता है, बदबू वाला होता है, लेकिन स्वेद जो होता है दिव्य होता है, जो दिव्य लोगों के शरीर से निकलता है। तो 3 करोड़ भगवान की रानियां, विमल राजा की कन्याएं जो भगवान की रानियां बनी, और भगवान से शरीर से जब इतना बड़ा सुंदर स्वेद निकला तो इकट्ठा होकर बना विमल कुंड। तो विमल कुंड जो है सब तीर्थों का राजा मानते हैं उसको, उसमें 84,000 तीर्थ विराजमान, उसमें भगवान ने स्नान किया। सब तीर्थ स्थान जो है, जैसे मैंने कल आपको बताया, काम्य वन में आदि बद्री भी विराजमान है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, गया कुंड, सब का काम्य वन में विराजमान है। श्रीलंका है उसके अंदर, रामेश्वर है, सेतु बंद भी उसमें विराजमान है। इसलिए ब्रज जो है वो कंप्लीट धाम है, ब्रज के अंदर सब कुछ तीर्थ जो है वो विराजमान है। भगवान ने सभी कुंड में स्नान किया और काम्य वन को पार करते हुए भगवान जो है वो नंदगांव आए, और नंदगांव के आगे एक कहानी आपको हम कल बताएंगे। नंदगांव में आके भगवान ने क्या किया। बोलो गौरांग महाप्रभु की
जय,
चैतन्य महाप्रभु की
जय,
निताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल।